سلطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ نبیر پر تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ کوہ نبیر ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر لڑھک کر دامن کوہ میں جا گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ نبیر کو ٹھوکر لگا کر فرمایا، اے نبیر ساکن رہ، تجھ پر نبی اور صدیق اور دو شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی کوہ نبیر ساکت ہو گیا۔ زمین کی تخلیق سے متعلق دو نظریات ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق زمین ابتدا میں سورج کا حصہ تھی، جو ایک ٹکڑے کی طرح اچھل کر سورج سے علیحدہ ہو گئی۔ دوسرا نظریہ بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ دونوں نظریات کے مطابق زمین نے رفتہ رفتہ بیضوی شکل اختیار کر لی ہے۔ قطبین اور خط استوا پر کرہ ارض کا ڈایا میٹر الگ الگ ہے۔ خط استوا زمین کا ڈایا میٹر 6378 کلو میٹر ہے۔ زمین 23 ڈگری زاویے پر جھکی ہوئی ہے اور تقریباً 24 گھنٹوں میں گھوم جاتی ہے۔ اس گردش سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر ایک سال میں پورا کرتی ہے اور اس حرکت سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ زمین کی ساخت، جھکاؤ، پھیلاؤ، گردش اور ترتیب و توازن قدرت کی معین مقداروں کا بہترین شاہکار ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں اگر زمین کا جھکاؤ 25 ڈگری پر ہوتا تو قطبین پر جمی ہوئی برف پگھل کر سمندروں میں آ جاتی، اور جھکاؤ 22 ڈگری پر ہوتا تو یورپ قطب شمالی کی برف سے ڈھک جاتا۔ زمین محوری گردش 24 گھنٹے میں پوری کرتی ہے۔ اگر زمین محوری گردش 20 گھنٹوں میں پوری کرتی تو تیز ہوائیں چلتیں اور ان طوفانی ہواؤں سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی۔ اگر محوری گردش کا دورانیہ 24 گھنٹوں کے بجائے 25 گھنٹے ہوتا تو زمین خشک اور بنجر بن جاتی۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ سلطان کا مطلب 6 شعوروں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی انسان زمینی شعور پر رہتے ہوئے 6 شعوروں پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ زمینی شعور سے باہر نکل سکتا ہے۔ آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لیے 7 مزید شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ان 7 شعوروں کا ادراک حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا عارف بن جاتا ہے۔ صفات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے سالک 11 شعوروں سے گزرتا ہے۔ شعور کی طاقت کا دار و مدار زمان پر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دیوار کے اوپر گھڑی لگی ہوئی ہے، گھڑی کے درمیان سوئی لگی ہے، گھڑی میں 12 ہنسے بنے ہوئے ہیں، 1 سے 12 تک ہنسے اسپیس ہیں اور سوئی کا گھومنا ٹائم ہے۔ اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھمایا جائے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 6 کے ہنسے پر پہنچ جائے تو زمین پر موجود شعور جو اسپیس میں بند ہے پردے میں چلا جائے گا اور انسان کو سلطان حاصل ہو جائے گا۔ جس سلطان کے ذریعے وہ زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے، اور جب سوئی کو اس طرح گھما دیا جائے کہ وہ پلک جھپکنے کے وقت سے پہلے 12 پر پہنچ جائے تو انسان کو وہ سلطان حاصل ہو جائے گا جس کے ذریعے وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سوئی 12 کے ہنسے سے بیک وقت 2 पर आ जाए तो इंसान को वो शऊर हासिल हो जाता है जो इसे ख्वाब दिखाता है। अगर सुई बयक वक्त 12 से उछलकर 3 पर आ जाए तो इसे मुराकबे का शऊर हासिल हो जाता है। अगर सुई बयक वक्त 4 पर आ जाए तो इसे वो शऊर हासिल हो जाता है जिसको वही कहते हैं, और ये वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है, हमने शहद की मक्खी पर वही की। अगर 12 के हिंसे पर कायम सुई इतनी तेजी के साथ हरकत करे कि वो एकदम 5 पर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई है जिसको कुरान में सुल्तान कहा है, यानी अब इंसान जमीन के किनारों से बाहर देख सकता है। जमीन के किनारों से बाहर देखने की सलाहियत के हामिल सालिक के अंदर पहले आसमान का शऊर पैदा हो जाता है। अला हाजुल कयास, इस तरह 7 आसमानों को वो देख भी लेता है और 7 आसमानों में वो दाखिल भी हो जाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया, हमने आसमान और जमीन को तह दर तह बनाया है। सूरह तारिक में इरशाद फरमाया है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और जमीन की किस्म भी इन्हीं की मानिंद है। सूरह मोमिनीन आयत नंबर 17 में है, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। तह दर तह से मुराद दरअसल वो शऊर या सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने इंसान को वदियत की हैं। 7 तहों वाले आसमान या ज़मीन से मुराद ये है कि हर तह एक मुकम्मल निज़ाम है और हर निज़ाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका एक दूसरे से तसादुम नहीं होता। इन सब का रिश्ता खालिक कायनात के साथ कायम है। तमाम चीज़ें जो 7 आसमानों और ज़मीनों में हैं सब अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। ये तमाम चीज़ें और मखलूकात इस बात का इल्म रखती हैं कि हमारा खालिक अल्लाह है, और इस इल्म पर यकीन रखते हुए अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं और शुक्र अदा करती हैं। अरबों खरबों से ज़्यादा इन चीज़ों या मखलूकात में से कोई एक मखलूक भी अल्लाह की खालकियत से इन्हराफ करे तो निज़ाम में खलल वाक़े हो जाएगा। यही बात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, तमाम चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह की हम्द बयान करती हैं, यानी अल्लाह की खालकियत से इन्हराफ नहीं करती। कानून ये है कि जब कोई आदमी इस दुनिया में पैदा होता है तो वो माजी से आता है, और जब वो दोबारा माजी में पलटता है तो सुइयों की गर्दिश रिवर्स हो जाती है। जब तक इंसान 6 दुनियावी शऊर या 6 दायरों में रहता है इसके ऊपर मकानियत का गलबा रहता है, और जब इंसान 6 शऊरों से निकलकर 7वें शऊर में दाखिल होता है तो 11वें शऊर तक इस पर जमानियत का गलबा रहता है। मकानियत मगलूब हो जाती है, ज़मीन व आसमान में मौजूद हर शय शऊर रखती है। वो इस बात से वाकिफ है कि रहमतुलिल आलमीन सैयदना हुजूर अलैहि सलातो वसलाम के लिए कायनात की हर शय महकूम है। पहाड़ के ऊपर जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो महकूम पहाड़ आपकी जारी व सारी हाकमियत के रोब से हिलने लगा, यानी इस पर जलजला आ गया। जलजले के माने हैं जोर से हिला देना। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। सूरह जलजाल। जब वो होने वाला वाकया पेश आ जाएगा तो कोई इसके वाकये होने को झुटलाने वाला न होगा। वो तह व बाला कर देने वाली आफत होगी। ज़मीन इस वक्त एक बार हिला दी जाएगी और पहाड़ इस तरह रेजा रेजा हो जाएंगे जैसे उड़ता हुआ गुबार। सूरह वाकया। पहाड़ में शऊर है, कुरान पाक इस बात की तस्दीक करता है। और हमने अपनी अमानत पेश की आसमानों पर और जमीन पर और पहाड़ों पर। समावात व अर्ज और पहाड़ों ने कहा कि हम इस अमानत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। किसी चीज के बारे में इनकार या इकरार इस बात की अलामत है, इस शय के अंदर शऊर है। जिस तरह कोई एक फर्द अपने शऊर को नहीं देख सकता और शऊर की मजाहमत या शऊर की पसंदीदगी का वजन महसूस करता है, इसी तरह हम पहाड़ों को वजनी और जमा हुआ देखते हैं। तुम देखते हो पहाड़ और गुमान करते हो कि ये जमे हुए हैं, हालांकि पहाड़ बादलों की तरह उड़ रहे हैं। अल-कुरान। यानी पहाड़ कसीफ मादे पर कायम नहीं हैं। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ से मुखातिब होकर फरमाया, ठहर जा, तुझ पर नबी और सिद्दीक और दो शहीद खड़े हैं, तो पहाड़ ने हुक्म की तामील की और वो हिलने और लरजने से रुक गया।